सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अम्बरीश सक्सेना और आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर सरकार के प्रयास। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ संजीव चोपड़ा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो जैसा संजीव जी हमें पता है कि पश्चिम एशिया में लगभग 3 सप्ताह हो गए हैं और स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और दुनिया के तमाम देशों पर इस संकट का असर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि हम पश्चिम एशिया के तमाम देशों की बात करें तो वहां पर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो जहां जहां संकट है वहां पर भारतीयों को किसी न किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार काफी सजग है और बड़ी संख्या में हम अपने भारतीयों को वहां पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में भारतीय स्वदेश भी वापस लौटे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये जानकारी दें कि इस संकट का वहां रहने वाले भारतीयों पर क्या असर है और उनको सुरक्षा देने और उनको वापस बुलाने के लिए भारत सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है।
अमरीश जी, सबसे पहले तो जो खाड़ी के देश हैं, भारत के कम 1 करोड़ नागरिक खाड़ी के देशों में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। कई स्टेट्स जैसे केरला की स्टेट है या और कई स्टेट्स हैं, उनसे काफी ज्यादा पॉपुलेशन वहां काम करती है। लेकिन फरवरी 28 को इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइंट अटैक किया ईरान के ऊपर, तब से सिचुएशन आज तक 3 हफ्ते हो चुके हैं, चौथा हफ्ता एंटर कर रहा है। सिचुएशन काफी चिंताजनक है, क्योंकि नागरिकों की सेफ्टी इंश्योर करना और एनर्जी सिक्योरिटी भी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब हो गया है काफी पूरे वर्ल्ड का। तो अब तक मैं आपको बता दूं कि कम से कम 3 लाख जो इंडियंस हैं वो वापस आ चुके हैं खाड़ी के देशों में, जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, और फ्लाइट्स रेगुलरली चल रही हैं। 24/7 हेल्पलाइंस एम्बेसीज ने बनाई हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां बनाई हैं, जैसे कतर में, और बहरीन की तो अभी बंद है उनकी जो फ्लाइट्स हैं थोड़ी, बिकॉज सेफ नहीं है वहां। और 6 इंडियन नेशनल्स हैव ऑल्सो लॉस्ट देयर लाइफ, मतलब उनकी जान जा चुकी है, एक मिसिंग है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी गल्फ के देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स से बात की है, कल भी 5 से करी है, आज ईरान के प्रेसिडेंट से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात करी है। और सबसे पहली बात उन्होंने भारतीयों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करी और उन्हें थैंक भी किया और साथ में ईद की शुभकामनाएं भी दी, और साथ ही साथ में ये भी कहा कि डायलॉग होना चाहिए ताकि पीस आ सके वेस्ट एशिया में। लेकिन सिचुएशन अभी भी चिंताजनक है, लेकिन फ्लाइट्स काफी ऑपरेट हो रही हैं और भारत की सरकार काफी सजग है लोगों को वापस लाने के लिए।
जी संजीव जी, इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में भारतीय काफी छात्र हैं जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीर के काफी छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं? क्योंकि ईरान से निकालना भारतीयों को थोड़ा मुश्किल तो है ही, जिस तरह के हालात हैं, तो उसके लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है?
अब तक भारत सरकार ने 913 इंडियंस ईरान से भी वापस आए हैं रोड रूट से, थ्रू आर्मेनिया और अजरबैजान से। वहां जो लोकल लेवल की एम्बेसीज हैं वो उनको गाइडलाइंस इश्यू कर रही हैं प्रॉपरली इंडियंस को, ताकि सेफ्टी इंश्योर रखें और उनसे इन टच रहें। और प्रधानमंत्री खासकर बात कर रहे हैं सब देशों के हेड्स ऑफ स्टेट से कि इंडियंस को किसी ना किसी तरह सेफली दूसरे पैसेजेस के थ्रू, जैसे इसराइल से नहीं लाया जा रहा, एयर स्पेस अगर बंद है तो जॉर्डन के थ्रू लाया जा रहा है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया ईरान के लोग आर्मेनिया के थ्रू आ रहे हैं, और गल्फ के कुछ देशों के जो वहां से नहीं है, तो जैसे कतर की स्पेस अगर बंद है तो वाया सऊदी अरेबिया लेके आ रहे हैं उनको। तो अल्टरनेटिव रूट से इंडियंस को सेफली इंडिया वापस लाने की कोशिश जारी है।
इसके अलावा संजीव जी, चूंकि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसको भी बंद कर दिया है ईरान ने, ऐसी स्थिति में काफी बड़ी संख्या में जो शिप्स हैं वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, जिसमें भारत के शिप भी काफी बड़ी संख्या में है, और उन पर जो भी नाविक सवार हैं उनकी सुरक्षा का भी मसला है। इस दिशा में भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है?
जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, बेसिकली यही एक मेजर रूट है जहां वर्ल्ड की 20% ऑफ ऑयल एंड एलपीजी एंड नेचुरल गैस की सप्लाईज जो आती हैं वो यहां से ही आती हैं। तो ये सारी डिसरप्शन होने के बाद इंडिया के दो शिप्स तो ईस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खड़े हैं लेकिन वो सेफ हैं, और 22 शिप जो है वो वेस्ट साइड पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी खड़े हैं, वो भी सेफ है अभी, लेकिन वहां पे सेफ्टी इंश्योर नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्राइक्स चल रहे हैं। ईरान शिप्स पे भी अटैक कर रहा है और एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे भी अटैक कर रहा है, जितनी भी गल्फ के बाकी देश हैं, और इसराइल और अमेरिका तो अटैक कर ही रहा है उनके इंस्टॉलेशंस पे। चिंताजनक बात यह है कि आज उनका जो नटान न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, वहां पे भी एक एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि रेडिएशन लीक नहीं है वहां, लेकिन वॉर खत्म होने के आसार दिख नहीं रहे क्योंकि दोनों साइड्स ने बहुत स्ट्रांग रुख अपनाया है और थ्रेटन किया है कि हम अटैक्स को और इंटेंसिफाई करेंगे। अमेरिका ने अपने 3 एम्फीबियन शिप्स भी भेजे हैं इस एरिया में, असॉल्ट शिप्स जो हैं, और 2500 एडिशनल मरीन्स भी भेजे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करना चाहते हैं वॉर को, लेकिन आने वाले समय में मिलिट्री ऑफेंसिव बढ़ने वाला है, मुझे ऐसी आशंका लग रही है।
संजीव जी, भारतीयों की सुरक्षा के अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा है भारत के समक्ष, वो है हमारी ऊर्जा की सुरक्षा, और हमारी ऊर्जा की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती रहे, खासतौर से अगर हम एलपीजी की बात करें। बीच में काफी इस तरह की एक माहौल बन गया था कि काफी कमी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, भारत सरकार ने इस दिशा में भी काफी प्रयास किए हैं। तो एलपीजी को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की रणनीति भारत ने बनाई है जिससे कि जो आम व्यक्ति है, आम उपभोक्ता है, उसको किसी तरह की परेशानी न हो।
मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि लगभग 65% जो इंडिया का एलपीजी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आती थी इंपोर्ट्स, और उनमें से 47% सिर्फ कतर से ही एलपीजी सप्लाई आती थी। तो वहां से क्योंकि सप्लाई बंद है तो जाहिर है कि सिचुएशन अलार्मिंग है, एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है, तो गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है लोगों को कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज करें। अभी तक हालांकि एलपीजी के अलावा पेट्रोल और डीजल पे ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि अभी प्राइस राइज नहीं हुई, कोई क्यूज नहीं है पेट्रोल पंप्स के बाहर, लेकिन एलपीजी गोडाउन्स और एलपीजी आउटलेट्स के बाहर जरूर काफी लंबे क्यूज हैं। इनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने काफी चीजें इंश्योर करी हैं, जैसे 25 डेज के बाद एक नेक्स्ट सिलेंडर मिलेगा, और स्टेट्स को ये भी प्रोत्साहित किया है कि वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो पीएनजी की सप्लाई है, जैसे दिल्ली और बड़े महानगरों में तो पीएनजी की सप्लाई है कुछ एरियाज में, लेकिन पेनेट्रेशन जो है पूरे कंट्री में पीएनजी की सप्लाई सिर्फ 6% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन एलपीजी सिलेंडर्स के थ्रू ही एनर्जी यूज करती है। तो स्टेट्स को प्रोत्साहित किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज ही बल्कि चिट्ठी लिखी है स्टेट्स को कि उनको एडिशनल एलोकेशन करेंगे कमर्शियल एलपीजी की अगर वो पीएनजी की एक्सपेंशन करें। तो पीएनजी की एक्सपेंशन के लिए पहले 10% था, एडिशनल 20% एलोकेशन और देने की, मतलब 50% एलोकेशन इवन टू कमर्शियल, एडिशनल एलोकेशन टू कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जैसे रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, होटल्स, इंडस्ट्रियल कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी इंडस्ट्री, इन सबको देने के लिए चिट्ठी लिखी है कि स्टेट्स प्रोत्साहित करें। सरकार ने काफी लोगों को जागरूक किया है, लोगों को मैसेजेस भेजे हैं, और 93% बुकिंग सारी ऑनलाइन कर ली है। 11,300 टन ऑफ कमर्शियल एलपीजी डिलीवर भी हुई है स्टेट्स को पिछले एक हफ्ते में, जिसमें से 30% सप्लाईज जो है वो हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी गई हैं, एटलीस्ट 18 स्टेट्स को। तो गवर्नमेंट अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए प्रोत्साहित कर रही है स्टेट्स को, लोगों को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो एलपीजी की, उसको रोका जा सके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, और जहां जहां नहीं बनाए उन स्टेट्स को बोला जा रहा है कि आप भी सेटअप कीजिए। अभी तक एलपीजी कन्वर्शन जो है टू पीएनजी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी शुरू हो रही है।
लेकिन संजीव जी, जो हालात हैं, अगर लड़ाई जल्दी बंद हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन जो हालात हैं तो अभी सारे प्रयासों के बाद भी अगर ये लड़ाई लंबी खींचती है और एलपीजी आने की समस्या होती है देश में, जैसे आपने कहा कि ज्यादातर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके माध्यम से ही आती है, तो अगर वो कहीं ना कहीं बाधित रहा रास्ता और ये लड़ाई और 2 हफ्ते या 4 हफ्ते तक गई, तो फिर किस तरह की रणनीति भारत सरकार को अपनानी पड़ेगी एलपीजी को लेकर, कोई संकट ना हो इसको रोकने के लिए।
स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज तो अभी बंद पड़ी है, मुश्किल से एक या दो जहाज आए हैं भारत में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अपने स्टेप अप किए हैं, प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। जैसे डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है एटलीस्ट 40% बढ़ाई है विद इन द कंट्री। तो सारी रिफाइनरीज जो है एलपीजी की वो एनहेंस कैपेसिटी पे चल रही है इस टाइम, ताकि ये क्राइसिस को टाइड ओवर किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्राइसिस, जैसे ऑयल मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी कुछ दिन पहले अपनी स्टेटमेंट में बताया कि ऐसा ग्लोबल क्राइसिस आज तक दुनिया में नहीं हुआ कि इतनी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया गया है, पूरा ही डिस्टर्ब हो गया है, उथल पुथल हो गया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्टरनेटिव सप्लाईज ऑफ एनर्जी, जैसे क्रूड ऑयल के लिए ऑस्ट्रेलिया से, वेनेजुएला से, रशिया से, यूनाइटेड स्टेट्स से और ओशियानिक कंट्रीज से ले रहा है। सिमिलरली एलपीजी सप्लाईज भी ऑल्टरनेटिव रूट से लेने की कोशिश चल रही है कि बाकी जगह जहां एलपीजी है, हालांकि कंसंट्रेटेड जो एलपीजी और नेचुरल गैस है वो ज्यादा गल्फ एरिया में ही है और कतर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का रिजर्व है वहां। तो कोशिश जारी है कि अल्टरनेटिव रूट से, ताकि सिचुएशन खराब ना हो, लेकिन ऑयल मिनिस्ट्री यही कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही कह रहे हैं कि अभी भारत सक्षम है और अभी तक इवन अगर वॉर कुछ देर और चलती भी है तो अभी सिचुएशन पैनिक वाली नहीं है।
जी संजीव जी, जैसे आपने भी जिक्र किया अभी पेट्रोल का या डीजल का, तो हालांकि मुख्य रूप से दाम सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की है, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो उसका किस तरह का असर आएगा और उसको रोकने के लिए भारत सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है?
पेट्रोल हर आदमी की जरूरत है, फार्मिंग सेक्टर में भी डीजल की जरूरत पड़ती है बहुत। तो जब से ये फरवरी 28 से जो वॉर शुरू हुआ है तो अभी तक तो सिचुएशन हैंडल करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे एनहांस करी है कैपेसिटी, लेकिन पेट्रोल और क्रूड के लिए जो क्रूड ऑयल आता है जिससे पेट्रोल बनता है उससे रिफाइन होता है, तो वो अल्टरनेटिव सोर्सेज से लेने की कोशिश चल रही है और काफी जगह से अल्टरनेटिवली आ भी रहा है। जैसे पहले 27 देशों से क्रूड ऑयल आता था, अब कम से कम नहीं तो 40 देशों से क्रूड ऑयल आ रहा है। सो इसको डाइवर्सिफाई किया है, प्लस गवर्नमेंट ये भी कह रही है नागरिकों को एलपीजी ऑयल एंड अदर रिसोर्सेज को थोड़ा कंजर्व करना चाहिए, थोड़ा अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने चाहिए और थोड़ा तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस इतना ज्यादा वर्ल्ड में आया हुआ है। तो गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि कम से कम अदर रूट से क्रूड इम्पोर्ट्स जो है, पहले 55% जो पहले था कि अदर रूट से आता था, 45% क्रूड जो था वो गल्फ रीजन से आता था, अब 70% क्रूड इम्पोर्ट्स जो हैं जो बाकी अल्टरनेटिव रीजन से आ रहे हैं, तो एनहांस करी है सर्टनली कैपेसिटी।
जी इसके अलावा संजीव जी मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि जिस तरह की सिचुएशन है और एनर्जी को लेके काफी सावधानी रखने की और काफी सहयोग की जरूरत है, तो भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, इनके साथ किस तरह की सहयोग की रूपरेखा बना रहा है?
जी पड़ोसी देशों को भी भारत हमेशा हेल्प करता रहा है, तो अगर डिमांड जैसी उनकी आएगी, पहले मालदीव्स में क्राइसिस एक बार ही आया था पेट्रोल का, तो मालदीव्स को भारत ने सप्लाई किया, लेकिन वो सारा डिपेंड करेगा उनकी डिमांड कितनी है और अपनी अल्टरनेटिव सोर्सेज से कैसे उनको दे पाएंगे। तो कोशिश तो जारी है कि आसपास से भी कुछ करें एग्रीमेंट्स तो है, जैसे एनर्जी सप्लाईज पे भूटान के साथ भी एग्रीमेंट है
जी, जी।
लेकिन वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे है, पेट्रोल और नेचुरल गैस तो दूर से ही आ रही है। जैसे मुझे बताया जा रहा है कि कुछ पड़ोसी देशों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑयल प्राइसेस जो है स्काई रॉकेट कर गए हैं, वहां बहुत ज्यादा सीरियस क्राइसिस हो गया है अनलाइक हिंदुस्तान।
आपको क्या लगता है अभी जो प्रयास भारत सरकार कर रही है, ओवरऑल हम देखें पूरी जो एनर्जी की क्राइसिस है या जो एनर्जी की सुरक्षा है, ऊर्जा की सुरक्षा है, उसको लेके अभी आप क्या कहेंगे, क्या और प्रयास करने की अभी हमें जरूरत है?
जी सबसे बड़ी बात तो एक तो जैसे अल्टरनेटिव रूट से क्रूड ऑयल और एलपीजी सप्लाईज लाने की बात चल रही है, कोशिश जारी है और कर भी रहे हैं, प्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एलपीजी की इंक्रीज की जा रही है, 40% एनहांस कर दी है, लोगों को बोला जा रहा है कि कंजर्व ऑयल एंड एनर्जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक जो लोगों में है उसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। एक बार पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ गई है प्राइसेस, इसका खतरा है कि इस पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्राइस राइज बढ़ने की बहुत आशंका है, तो इसको कंट्रोल करना इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बाकी एफर्ट्स तो कर ही रहे हैं, पर इस नैरेटिव को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
जी,
क्योंकि लोगों के बीच में वो पैनिक नहीं आनी चाहिए। सिचुएशन जो आ रही है थोड़ी थोड़ी, आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है।
जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संजीव जी कि ये पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है और अभी तक आम आदमी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है ऊर्जा को लेकर, चाहे एलपीजी की बात हो या पेट्रोल डीजल की बात हो, और हम ये आशा करते हैं कि सरकार के प्रयास सफल होंगे और किसी तरह की पैनिक की कोई सिचुएशन होने की आशंका नहीं होगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में